आज है 21 जून दिन बुधवार। सभी सुनने वालों को नितिन श्रीवास्तव का नमस्कार। विपक्षी राजनीतिक दलों को झटका, नीतीश कुमार ने मन बनाया एनडीए उम्मीदवार रामनाथ कोविंद को राष्ट्रपति चुनाव में समर्थन देने का।
हम लोगों के लिए खुशी की बात है, बिहार के विकास की बात है, इसलिए हम लोग साथ हैं। सभी दल के विधायक, मंत्री और माननीय मुख्यमंत्री।
सऊदी शाह ने भतीजे के ऊपर चुना बेटे को, दिया क्राउन प्रिंस का ताज मोहम्मद बिन सलमान को। भारतीय क्रिकेट कोच अनिल कुंबले के इस्तीफे के बाद बहस इस बात पर कि कप्तान बड़ा या कोच। और दुनिया जहान में होगी पड़ताल उत्तर कोरिया के परमाणु कार्यक्रम की।
जितनी भी आप किसी से मदद ले लो, आपके पास अगर अपने वैज्ञानिक और इंजीनियर नहीं हो तो अणु बम पूरी तरह से बनाना पॉसिबल नहीं है।
पहले बीबीसी समाचार।
बीबीसी समाचार हरिता कांडपाल से। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड ने राष्ट्रपति पद के लिए एनडीए के उम्मीदवार रामनाथ सिंह कोविंद को समर्थन देने का ऐलान किया है। पार्टी ने यह भी कहा है कि कल कांग्रेस, वामदलों और अन्य विपक्षी दलों की दिल्ली में होने जा रही बैठक में हिस्सा नहीं लेगी। रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित होने के बाद बिहार के राज्यपाल के पद से हाल ही में इस्तीफा दिया था। सऊदी अरब के शाह सलमान ने बड़ा परिवर्तन करते हुए अपने बेटे मोहम्मद बिन सलमान को सऊदी अरब का क्राउन प्रिंस बना दिया है। इससे पहले शाह सलमान ने भतीजे मोहम्मद बिन नायफ को उत्तराधिकारी बनाया था और अब अपने पुत्र को ये हक दे दिया है। अब 31 साल के मोहम्मद बिन सलमान सऊदी अरब के उप प्रधानमंत्री बन जाएंगे। वो फिलहाल इस समय सऊदी अरब के विदेश मंत्री हैं। बेल्जियम के सरकारी वकील के मुताबिक राजधानी ब्रसेल्स के सेंट्रल स्टेशन में कल मारा गया संदिग्ध हमलावर कीलों और गैस के कनस्तर से भरे एक सूटकेस में विस्फोट करना चाह रहा था। बताया जा रहा है कि संदिग्ध ने अपने सूटकेस में धमाका करने की कोशिश की, लेकिन इसमें छोटी सी आग लग गई और बड़ा धमाका हो गया। इसके बाद वो इस्लाम के समर्थन में नारे लगाने लगा और उसने एक सैनिक पर हमला करने की कोशिश की, जिसके बाद उसे गोली मार दी गई। जांचकर्ताओं ने उसकी पहचान कर ली है। बेल्जियम के प्रोसिक्यूटर एरिक वेंडर सिप्त ने ज्यादा जानकारी दी।
The person has been identified as being O.Z. We never give the full identity.
इसकी पहचान O.Z. के तौर पर की गई है। इसकी असली पहचान कभी जाहिर नहीं की जाएगी। इसका जन्म 1981 में हुआ था और इसके पास मोरक्को की नागरिकता है। इससे पहले इसके आतंकवाद से जुड़े होने की कोई जानकारी नहीं मिली है। मोलेनबीक सेंट जॉ में इसके घर पर पुलिस ने तलाशी ली है। जांच जारी है, इसलिए ज्यादा जानकारी नहीं दी जा सकती। ये थे एरिक वेंडर सिप्त के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। ब्रिटेन की कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार ने नए संसदीय सत्र के लिए अपने एजेंडे का खाका पेश किया है। चुनाव में बहुमत हारने के बाद सरकार के एजेंडे में पार्टी मैनिफेस्टो के विवादित मुद्दों से दूरी बनाई गई है। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ ने ब्रिटेन की संसद के सत्र की औपचारिक शुरुआत अपने उद्बोधन से की। इसमें जिन 27 विधेयकों का जिक्र किया गया, उसमें से 8 विधेयक यूरोपीय संघ से ब्रिटेन की विदाई से जुड़े हुए हैं। इसमें अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ब्रिटेन यात्रा का कोई जिक्र नहीं किया गया, लेकिन प्रधानमंत्री कार्यालय ने सफाई दी है कि अभी यात्रा की तारीख तय नहीं है, इसलिए इसका जिक्र महारानी एलिजाबेथ के उद्बोधन में नहीं किया गया। लंदन में वर्ल्ड हॉकी लीग सेमीफाइनल्स खेला जा रहा है, जिसके क्वार्टर फाइनल में अब से कुछ ही देर बाद भारत मलेशिया आमने सामने होंगे। बीबीसी संवाददाता राखी शर्मा इस बारे में ज्यादा जानकारी दे रही हैं।
हॉकी वर्ल्ड लीग सेमीफाइनल के क्वार्टर फाइनल में आज भारतीय टीम मलेशिया के खिलाफ उतर रही है। टूर्नामेंट में अब तक भारत ने अपने 4 में से 3 मैच जीते हैं। जीत की हैट्रिक लगाने के बाद उसे ग्रुप के अपने आखिरी लीग मैच में नीदरलैंड्स के हाथों कल 1-3 से हार का सामना करना पड़ा। रैंकिंग के मामले में भारतीय टीम मलेशिया से कई ऊपर है। हालांकि इस टीम ने इसी साल की शुरुआत में सुल्तान अजलान शाह कप में भारत को 1-0 से हराया था।
ये थी राखी शर्मा। रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु ने कहा है कि नेटो गठबंधन ने रूस की सीमा के पास युद्ध की कार्रवाई बढ़ा दी है। उन्होंने कहा कि रूस की सीमा के पास नेटो गठबंधन देशों की सेनाओं ने 10,000 सैनिकों, 70 जंगी जहाजों और लड़ाकू विमानों के साथ सैनिक अभ्यास शुरू किया है। सर्गेई शोइगु ने कहा कि इससे साफ होता है कि पश्चिमी देश रूस विरोधी रवैया छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। बीबीसी समाचार।
ये बीबीसी की हिंदी सेवा है और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम दिनभर। मैं हूं नितिन श्रीवास्तव, नमस्कार। भारत में जैसे जैसे राष्ट्रपति चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, राजनीतिक दलों का इरादा भी साफ हो रहा है और साथ ही ये भी कि किसकी दावेदारी में कितना है दम। बुधवार को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने काफी दिन से जारी कयास पर विराम लगाते हुए ये साफ कर दिया कि उनका राजनीतिक दल जनता दल यूनाइटेड राष्ट्रपति पद के लिए रामनाथ कोविंद का समर्थन करेगा। रामनाथ कोविंद राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी भाजपा नेतृत्व वाले एनडीए के उम्मीदवार हैं। सुनिए दिल्ली से फैसल मोहम्मद अली की रिपोर्ट।
राष्ट्रपति चुनाव में नीतीश कुमार का ऊंट किस करवट बैठेगा, ये तो शायद तभी जाहिर हो गया था जब रामनाथ कोविंद के नाम के ऐलान के बाद नीतीश कुमार न सिर्फ बिहार के पूर्व राज्यपाल से मिलने गए बल्कि उन्होंने एनडीए उम्मीदवार के चुनाव पर व्यक्तिगत खुशी का इजहार भी किया। आज नीतीश कुमार ने पटना में पार्टी विधायकों की बैठक में ये बात खुलकर कह डाली।
हम लोग रामनाथ कोविंद के साथ हैं, बिहार के राज्यपाल हैं, ये डायरेक्ट राष्ट्रपति पद के लिए चुने जा रहे हैं, ये हम लोगों के लिए खुशी की बात है, बिहार के विकास की बात है, इसलिए हम लोग साथ हैं। सभी दल के विधायक मंत्री और माननीय मुख्यमंत्री।
जदयू प्रवक्ता रत्नेश साडा ने बाहर आकर मीडिया से ये बात कही। नीतीश कुमार ने कोविंद को समर्थन का ऐलान विपक्षी दलों की इसी मामले पर होने वाली बैठक के ठीक एक दिन पहले की है, लेकिन सीपीआई नेता अतुल कुमार अंजान कहते हैं कि विपक्ष की बैठक प्लान के मुताबिक ही होगी।
विपक्ष विपक्ष है और विपक्ष को निश्चित रूप से कल बैठक करके अपने एक साझा उम्मीदवार हम खड़ा करेंगे। हम देश के राष्ट्रपति के चुनाव को संकीर्ण जातिगत सीमाओं में बांधना नहीं चाहते थे, धर्मगत सीमाओं में नहीं बांधना चाहते थे, हम उसे राज्यों की भूगोल के अंतर्गत नहीं बांधना चाहते थे, लेकिन धन्य हो एनडीए, राष्ट्रवाद का ये नया परचम जो लहराया गया है। राष्ट्रपति सिर्फ मात्र राष्ट्रपति नहीं है, सांसद और विधायकों द्वारा चुना, भारत के सेना का सर्वोच्च कमांडर है, उससे भी अगर हम जातिगत बाड़ों में बांध करके सह और मात का खेल खेलेंगे, ये कौन सा राष्ट्रवाद है।
हालांकि बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के कोविंद के नाम के ऐलान के बाद ये सवाल कई जगहों पर पूछे जा रहे थे कि विपक्ष एक दलित उम्मीदवार का विरोध किस तरह कर पाएगा, लेकिन कांग्रेस, वामपंथी और कुछ दूसरे दल फिर भी अपना उम्मीदवार राष्ट्रपति चुनाव के लिए खड़ा करना चाहते थे। इस सिलसिले में लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार और पूर्व केंद्रीय मंत्री सुशील कुमार शिंदे का भी नाम लिया जा रहा था। जानकारों का मानना है कि नीतीश कुमार कोविंद के नाम का विरोध इसीलिए नहीं कर सकते थे क्योंकि इसका असर उनके महादलित समीकरण पर पड़ सकता था। दूसरे, नीतीश बिहार के गठबंधन में सीटों में कम है, इसीलिए भी शायद उन्हें बहुत सारे मामलों को बैलेंस करने की जरूरत पड़ती रहती है। जैसे नोटबंदी के मामले में जब सारा विपक्ष इसकी निंदा कर रहा था तो उन्होंने इसकी तारीफ की। नीतीश ने सर्जिकल स्ट्राइक पर भी केंद्र सरकार की तारीफ की थी। इस बीच तेलंगाना राष्ट्र समिति, बीजू जनता दल और वाईएसआर कांग्रेस ने भी कोविंद के उम्मीदवारी को समर्थन देने की बात कही है। मायावती पहले ही कह चुकी हैं कि वो कोविंद की उम्मीदवारी को लेकर सकारात्मक हैं। इस तरह से एनडीए के राष्ट्रपति के उम्मीदवार के खाते में लगभग 70% वोट आ चुके हैं। फैसल मोहम्मद अली, बीबीसी दिल्ली।
सनसनी नहीं, विश्वसनीयता का दम,
बीबीसी हिंदी।
भारत के पूर्व कप्तान और मंगलवार तक टीम के कोच रहे अनिल कुंबले के इस्तीफे पर बहस बढ़ती जा रही है। जहां कुंबले ने बात और अपनी वजह सार्वजनिक तौर पर कही, वहीं कुछ दिन पहले चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान सवाल पूछे जाने पर कोहली आपस में दरार की बात से साफ इनकार कर गए थे। सवाल इस बात पर भी उठ रहे हैं कि इस हालिया संकट का भारतीय क्रिकेट पर कितना असर पड़ेगा, जिसे पाकिस्तान से वर्षों बाद एक करारी हार का भी सामना करना पड़ रहा है। मैंने कुछ देर पहले वरिष्ठ क्रिकेट पत्रकार प्रदीप मैगजीन और अपने सहयोगी जुबैर अहमद के सामने यही सवाल रखा।
देखिए, कोच और प्लेयर का आपस में डिसएग्रीमेंट हो सकती है, पास में भी हुई है, गांगुली ग्रेग चैपल का एग्जांपल हमारे पास है, तो ये डिसएग्रीमेंट नई चीज नहीं है, लेकिन जिस तरीके से हैंडल हुआ है, जैसे कि चैंपियंस ट्रॉफी से पहले इंडिया ने एडवर्टाइज किया कि नया कोच चाहिए तो पता लगा कि शायद कुंबले को एक्सटेंशन नहीं मिल रही है, फिर मीडिया में लीक खबरें आई कोहली की बन नहीं रही है कुंबले से। एक साल तक हमने देखा कि टीम बड़ा अच्छा प्रदर्शन कर रही थी और शायद जिन्होंने भी क्रिकेट कवर की है, जो टूर पे भी गए हैं टीम के साथ, उन्होंने देखा है, उनको कोई इंकलिंग नहीं थी कि कोई झगड़ा है। जब ग्रेग चैपल गांगुली का झगड़ा चल रहा था तब दुनिया बातें कर रही थी। तो अगर ऐसी बात थी और रामचंद्र गुहा ने जब अपना रेजिग्नेशन दिया तो उन्होंने भी ये बात पब्लिक की कि देखिए कुंबले को शायद कोहली चाहते नहीं है। तो उसी की कंटिन्यूएशन में अब भी जैसे ये मामला अब खत्म हुआ है, वो कोई ना बोर्ड पे अच्छी रिफ्लेक्शन करता है ना ही कोहली पे भी अच्छी रिफ्लेक्शन करता है। कुंबले का मैं इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि कुंबले ने थ्रू आउट अभी तक साइलेंस मेंटेन की थी। कोहली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में चैंपियंस ट्रॉफी के ईव पे बोला कि देखिए आप लोग मेरे से ज्यादा जानते होंगे, आप लोग झगड़ा ये क्रिएट करवा रहे हैं, ड्रेसिंग रूम में आपको पता नहीं क्या हो रहा है, कोई झगड़ा नहीं है।
बैगजी साहब हमारे साथ जुबैर अहमद हैं जो विराट कोहली के पक्ष पर भी काम कर रहे थे। जुबैर साहब आपको क्या लगता है, जैसे मैगजीन साहब ने कहा कि अनिल कुंबले ने एक साल बड़ा बेहतरीन काम किया, क्या आप उनसे सवाल पूछना चाहेंगे कि क्या नहीं हुआ?
जो मुझे समझ में आ रहा है प्रदीप मैगजीन साहब की जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस का आप हवाला दे रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी शुरू होने से पहले का, तो उस वक्त कोहली से पूछा गया था तो कोहली ने इस मनमुटाव कोच और कैप्टन के बीच उससे इनकार किया था, उन्होंने कोई भी चीज़ सार्वजनिक नहीं की थी। तो मेरे ख्याल से इस पूरे एक महीने का अरसा अगर आप देखें तो कोहली ज़्यादा मचोर मुझे नज़र आ रहे हैं और जो कोच साहब हैं वो सार्वजनिक कर रहे हैं अपने झगड़े को। मेरे ख्याल से उन्होंने हैंडल सही नहीं किया इसको। आप क्या कहेंगे इसके बारे में?
देखिए सार्वजनिक तो बोर्ड ने किया लीक्स के थ्रू, एक तरफ से सार्वजनिक कर रहे थे कि इनकी बन रही, रामचंद्र गुहा ने जो लेटर लिखा था क्रिकेट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स को उसमें उन्होंने साफ तौर पे लिखा था कि बोर्ड कह रही है कि कोहली उनको आके बोल गया है कि उनको पसंद नहीं है कुंबले का तरीका। कोहली ने, मैं नहीं कहता सार्वजनिक किया, मैं ये कह रहा हूं कि कोहली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रेस वालों का मजाक उड़ाया कि हमारा कोई झगड़ा नहीं है।
आई थिंक वो तो बहुत मैच्योरिटी का सबूत दिया, उसको बाहर
तो
करना नहीं चाहिए था।
मजाक उड़ाने की तो जरूरत नहीं ना, जब आपका झगड़ा है तो आप कहिए कि देखिए ये आप उसको किसी और मैच्योर ढंग से हैंडल कीजिए। आप प्रेस वालों का मजाक उड़ा रहे हैं जो आप पता लग रहा है कि वो सच बोल रहे थे प्रेस वाले।
इसी से जुड़ा एक सवाल है, आपने बहुत अहम बात उठाई कि प्रेस कॉन्फ्रेंस यानी पब्लिक जो पोस्चरिंग होती है उसमें, लेकिन पब्लिक पोस्चरिंग में लगातार इंडियन क्रिकेट को लेकर ये सवाल उठते रहे हैं कि कप्तान बड़ा या कोच। इंडिविजुअल पर्सनालिटीज रही हैं, कपिल देव भी कोच रहे हैं, फॉर्मर कैप्टन भी रहे हैं, अजीत वाडेकर ऐसे लोग भी रहे हैं, तो आपके हिसाब से ये कोच बनाम कप्तान का जो ये पैमाना है ये कब तक पलड़े के तौर पर इसको आंका जाएगा?
देखिए क्रिकेट में तो ऑब्वियसली कप्तान बड़ा कोच से, अगर ऐसा नहीं होता तो शायद कोहली को कप्तानी से हटना पड़ता और कुंबले कोच रह जाते। अगर ये फुटबॉल का मसला होता जहाँ की जो कोच है मैनेजर है वो डिसाइड करता है टीम की स्ट्रेटजी क्या है, कौन खेलेगा कौन नहीं खेलेगा, वो एक सुप्रीमो है। क्रिकेट में उल्टा है।
ये कंट्रोवर्सी पहली है विराट कोहली एज ए प्लेयर की भी और एज ए क्रिकेट कैप्टन की भी, आपके हिसाब से क्या देखते हैं आगे के दिनों में?
देखिए ये थोड़ा सा एक तरीके से इमेज कोहली की जो इतनी शानदार बनी हुई थी, देखिए उनका जो पहले का दौर का करियर है उसमें कोहली एक बड़े एग्रेसिव गुस्से वाले एक स्पॉइल्ड ब्रैट की तरह सामने आए थे, लेकिन जब से कप्तान बने हैं तब से उन्होंने बड़ी मैच्योरिटी के साथ टीम को अपने आप को हैंडल किया है। लेकिन ये एक ऐसा एपिसोड है जिसका ब्लेम मैं ज्यादा बोर्ड को दे रहा हूँ, कोहली को कम दे रहा हूँ। अगर कोहली को पसंद नहीं था कुंबले कोच तो बोर्ड एक बेहतर तरीके से इसको हैंडल कर सकती थी।
कोहली कुंबले विवाद पर बात कर रहे थे प्रदीप मैगजीन और जुबैर अहमद।
खबर सच है अगर बीबीसी पर है।
रुक करते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों का। सऊदी अरब के शाह सलमान ने अपने भतीजे मोहम्मद बिन नाइफ को हटाकर अपने बेटे मोहम्मद बिन सलमान को सऊदी का क्राउन प्रिंस बना दिया है। यमन में सऊदी के विवादित युद्ध की कमान संभालने और देश के आर्थिक बदलावों का नेतृत्व कर रहे 31 वर्षीय मोहम्मद बिन सलमान के क्राउन प्रिंस बनने से अरब जगत में क्या बदलाव होंगे? बीबीसी संवाददाताओं का भेजा ब्यौरा सुनिए दिलनवाज पाशा से।
أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود أوامر ملكية وهي إعفاء صاحب السمو الملكي الأمير محمد.
سعودي عرب کے سرکاری ٹی وی چینل کے یہ سماچار واچک سعودی کے شاہ سلمان بن عبد العزیز آل سعود کے اپنے بھتیجے راجکمار محمد بن نائف بن عبد العزیز کو کراؤن پرنس کے پد سے ہٹا کر اپنے بیٹے محمد بن سلمان کو کراؤن پرنس بنانے کی جانکاری دیش کو دے رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شاہ سلمان بن عبد العزیز ال سعود کے بعد تاج کے اتراधिकारी ان کے پتر محمد بن سلمان ہوں گے۔ غور طلب ہے کہ اس سے پہلے شاہ سلمان نے بھتیجے محمد بن نائف کو اتراधिकारी بنایا تھا اور اب अपने पुत्र को ये हक दे दिया है। इसे सऊदी की राजशाही में बड़ा बदलाव माना जा रहा है। सऊदी अरब के भावी शाह 31 वर्षीय मोहम्मद बिन सलमान ने देश में हो रहे बड़े आर्थिक बदलावों का प्रभार संभाला हुआ है। वो ये काम जारी रखेंगे। यही नहीं, यमन में सऊदी अरब विवादित युद्ध भी राजकुमार मोहम्मद बिन सलमान के नेतृत्व में ही लड़ रहा है। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में प्रोफेसर अदावी अल रशीद मानती हैं कि मोहम्मद बिन सलमान की महत्वाकांक्षाएं क्षेत्र में तनाव बढ़ा सकती हैं।
Under the new Crown Prince, I do not expect Saudi Arabia to continue with its historical tradition of doing.
मुझे लगता है कि नए क्राउन प्रिंस के नेतृत्व में सऊदी अरब पर्दे के पीछे से कूटनीति और अपने क्षेत्रीय विरोधियों से बातचीत या क्षेत्रीय तनावों में मध्यस्थता की अपनी ऐतिहासिक परंपरा को जारी नहीं रख पाएगा। हम एक अलग युग की ओर बढ़ रहे हैं। सऊदी अरब अब तुर्की, ईरान और इसराइल की तरह ही क्षेत्रीय शक्ति बनना चाहता है। मोहम्मद बिन सलमान की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए इस क्षेत्र में और खून खराबा हो सकता है। वहीं बैरूत की अमेरिकन यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रामी खोरी भी मानते हैं कि मोहम्मद बिन सलमान को क्राउन प्रिंस बनाए जाने के बड़े प्रभाव होंगे। प्रोफेसर खोरी कहते हैं,
The implications could be enormous, but they're going to take some more time to be clear. What's clear is that new
इसके परिणाम व्यापक हो सकते हैं, लेकिन उनके आकलन में कुछ समय लगेगा। लेकिन ये बिल्कुल साफ है कि मोहम्मद बिन सलमान के हाथों में कमान होने पर नई नाटकीय और कभी कभी साहसिक या कुछ मामलों में लापरवाह नीतियां उभर सकती हैं, लेकिन इसका फैसला समय ही करेगा। शाह सलमान 81 साल के हैं और 2015 में अपने भाई अब्दुल्लाह बिन अजीज के मरने पर सऊदी अरब के शाह बने थे, लेकिन उनके बाद कमान अरब जगत में तेजी से उभरे मोहम्मद बिन सलमान के हाथों में होगी। यमन में सऊदी अरब के विनाशकारी युद्ध के पीछे मजबूती से खड़े मोहम्मद बिन सलमान अपने देश में बहुत लोकप्रिय हैं, खासकर सऊदी युवाओं में। मोहम्मद बिन सलमान के क्राउन प्रिंस बनने से अरब जगत में खून खराबा बढ़ेगा या तनाव कम होंगे, ये समय ही बताएगा। लेकिन सऊदी अरब में बदलाव होने तय माने जा रहे हैं।
उधर लंबे समय से उत्तर कोरिया मिसाइल परीक्षण और परमाणु कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में लगा हुआ है। अमेरिका चाहता है कि उत्तर कोरिया परमाणु कार्यक्रम बंद कर दे। पश्चिमी देश उस पर लगातार प्रतिबंध और कड़े करते जा रहे हैं, लेकिन इस सबसे बेपरवाह उत्तर कोरिया अपने काम में लगा हुआ है। उत्तर कोरिया का दावा है कि 2006, 2009, 2013 और 2016 में जनवरी और सितंबर में सफल परमाणु परीक्षण किए गए हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि दुनिया में अलग थलग पड़ते जा रहे इस देश ने परमाणु हथियार हासिल कैसे कर लिए। दुनिया जहान में मोहनलाल शर्मा इसी की पड़ताल कर रहे हैं।
दुनिया जहान।
मानिल 미국이 무한 도발을 걸어온다면 우리 혁명 무력은 즉시 선멸적인 타격을 가할 것이며
उत्तर कोरिया ने इस साल दो बड़े सैन्य प्रदर्शन, कई मिसाइल परीक्षण और परमाणु परीक्षणों का दावा करके दुनिया के सामने अपनी बढ़ती ताकत दिखाई और कहा कि वो किसी भी चुनौती से निपटने के लिए तैयार है। अमरीकी उपराष्ट्रपति माइक पेंस ने जापानी सैनिकों को संबोधित करते हुए कहा था,
नॉर्थ कोरिया इज द मोस्ट डेंजरस एंड अर्जेंट थ्रेट टू द पीस एंड सिक्योरिटी ऑफ द एशियन पैसिफिक।
एशिया प्रशांत की शांति के लिए उत्तर कोरिया खतरा है। किसी भी हमले, चाहे वो परमाणु हमला ही क्यों न हो, हमें उसे हराना होगा।
दरअसल उत्तर कोरिया के बम बनाने की तकनीक हासिल करने की कहानी इतिहास के पन्नों में छुपी है। इसे जानने के लिए हमें अक्टूबर 1950 में जाना होगा।
And now, let's go back to October 1950. This is war.
उस वक्त कोरियाई युद्ध शुरू हुआ था। इसमें लाखों लोगों की जान गई। इस युद्ध के बाद ही उत्तर कोरिया को लगने लगा कि उसके पास परमाणु हथियार होने चाहिए। उत्तर कोरिया को लगता था कि अमेरिका उसके खिलाफ परमाणु हथियार का इस्तेमाल कर सकता है। कोरियाई युद्ध खत्म होने के बाद उत्तर कोरिया ने न्यूक्लियर रिसर्च पर काम करना शुरू किया। उसने इसे पहले बिजली उत्पादन से जोड़ा और इसके लिए उसने अपने कम्युनिस्ट सहयोगियों से मदद ली। उत्तर कोरिया को ये मदद मिली सोवियत संघ से। विशेषज्ञ कहते हैं अगर यूरेनियम से बिजली पैदा करने की प्रणाली विकसित कर ली जाए तो हथियार तक पहुंचना मुश्किल नहीं होता। 1990 में सोवियत संघ के टूटने के बाद उत्तर कोरिया ने नए दोस्त की तलाश शुरू की। और उसे ये दोस्त मिला पाकिस्तान के रूप में। दोनों देशों के बीच डील हुई, लेकिन इसके दो चेहरे थे, एक आधिकारिक और एक रहस्य से भरा गोपनीय। रिटायर्ड ब्रिगेडियर फिरोज हसन खान पाकिस्तान में आर्म्स कंट्रोल के तत्कालीन डायरेक्टर थे। उन्होंने एक साक्षात्कार में बीबीसी से कहा,
इट वॉज अ स्टेट टू स्टेट डील बिटवीन नॉर्थ कोरिया एंड पाकिस्तान फॉर ट्रांसफर ऑफ लिक्विड फ्यूल बैलिस्टिक मिसाइल टेक्नोलॉजी टू पाकिस्तान।
उत्तर कोरिया और पाकिस्तान के बीच लिक्विड फ्यूल बैलिस्टिक मिसाइल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने के समझौते हुए। दोनों देशों के बीच आधिकारिक समझौता हुआ कि उनके वैज्ञानिक मिसाइल टेक्नोलॉजी पर साथ मिलकर काम करेंगे, और गोपनीय समझौता था कि पाकिस्तान उत्तर कोरिया की मदद परमाणु हथियार बनाने में करेगा।
The state of Pakistan by allowing the AQ Khan lab to get in with Pyongyang allowed Pyongyang to get into the AQ Khan network.
इस तरह से उत्तर कोरिया ने मिसाइल विकसित करने में पाकिस्तान की मदद की, और पाकिस्तानी वैज्ञानिक अब्दुल कदीर खां के रिसर्च सेंटर ने उत्तर कोरिया को परमाणु हथियार विकसित करने में।
पाकिस्तान को परमाणु संपन्न देश बनाने का श्रेय कदीर खान को ही दिया जाता है। कदीर खान पर आरोप है कि उन्होंने दूसरे देशों को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी बेची। पाकिस्तान और उत्तर कोरिया के बीच ये संबंध तब सामने आया जब इस्लामाबाद में एक वैज्ञानिक की पत्नी की मौत हो गई और उनके परिवार को सामान समेत प्योंगयांग वापस भेज दिया गया। लेकिन इस घटना के बाद दुनिया भर के देश ये सवाल उठाने लगे कि पाकिस्तान में उत्तर कोरिया के वैज्ञानिक क्या कर रहे हैं। इन सवालों का जवाब आसान नहीं था। ब्रिगेडियर फिरोज हसन खान,
जब भी हम एक्यू खान से उत्तर कोरिया के लोगों को वापस भेजने की बात कहते थे, वो उसे टाल देते थे और कहते थे कि उन्हें कुछ और महीनों का वक्त दें।
एक्यू खान वुड कम बैक एंड से, सर जस्ट गिव मी अ कपल ऑफ मोर मंथ्स।
सालों बाद अब्दुल कदीर खान का नेटवर्क दुनिया के सामने आ गया। ये वो नेटवर्क था जो उत्तर कोरिया के साथ साथ अन्य देशों को परमाणु तकनीक मुहैया करा रहा था। 2004 में अब्दुल कदीर खान ने लीबिया, उत्तर कोरिया और ईरान को परमाणु जानकारियां देने की बात स्वीकार करी और माफी मांगी।
My dear brothers and sisters, I have chosen to appear before you to offer my deepest regrets and unqualified apologies.
हालांकि बाद में पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ ने उन्हें क्षमादान दे दिया। उसके बाद से उन्होंने अपने कई बयानों में कहा कि उन पर लगे आरोप गलत थे और उनसे जबरन परमाणु जानकारी बेचने की बात मनवाई गई थी। लेकिन ये वही एक्यू खान थे जिन्हें पाकिस्तान में नेशनल हीरो माना जाता है। 1990 के अंत तक उत्तर कोरिया को जो चाहिए था उसने हासिल कर लिया, यानी यूरेनियम संवर्धन की तकनीक, और यही तकनीक परमाणु बम बनाने के लिए काम आने वाली थी। पर परमाणु बम बनाने की प्रक्रिया बेहद जटिल है। इसके लिए सिर्फ यूरेनियम संवर्धन की तकनीक ही नहीं, बहुत सारे उपकरण भी चाहिए, जैसे सेंट्रीफ्यूज मशीन, ब्लोअर वगैरह वगैरह। ये सारे उपकरण तो उत्तर कोरिया खुद बना नहीं सकता था, और परमाणु कार्यक्रम के लिए विदेशों से सामान आयात करने पर उस पर प्रतिबंध लगे हुए थे। तो उत्तर कोरिया ने इन सब को हासिल करने के लिए कई रास्ते खोजे। उसे वो रास्ता मिला चीन से। अंतर्राष्ट्रीय हथियार निरीक्षक डेविड ओब्रायन इंस्टीट्यूट फॉर साइंस एंड सिक्योरिटी के संस्थापक हैं।
It's been very easy for North Korea to recruit a Chinese company.
उत्तर कोरिया ने चीन में कंपनियों को अपना एजेंट बना लिया। इन कंपनियों ने ग्राहक बनकर स्थानीय जरूरतों के लिए मशीनों का आयात किया, और फिर ये सामान व्यापार की आड़ में उत्तर कोरिया पहुंचता रहा।
And China doesn't do border checks in any meaningful way.
दुनिया भर के बाजारों से सामान हासिल करने के बाद अब उत्तर कोरिया को एक ही काम करना था, उन्हें जोड़कर परमाणु बम बनाना। लेकिन अगर तकनीक के साथ साथ आपने सब कुछ दुनिया भर से जुटा भी लिया तो भी बम बनाना आसान नहीं। इसके लिए उसके वैज्ञानिक जुटे थे। विज्ञान पत्रकार पल्लव बागला कहते हैं,
डॉक्टर एक्यू खान का जो एक न्यूक्लियर वॉलमार्ट जिसको कहते हैं, न्यूक्लियर ट्रेड का जो उन्होंने क्लैंडेस्टाइन नेटवर्क चला रखा था, उसके बीच में उन्होंने जो आपस में खरीद फरोख्त की, उसकी मदद से जरूर कहीं ना कहीं उत्तर कोरिया ने अपना अणु बम बनाने में क्षमता प्राप्त की। लेकिन जितनी भी आप किसी से मदद ले लो, आपके पास अगर अपने वैज्ञानिक और इंजीनियर नहीं हो तो अणु बम पूरी तरह से बनाना पॉसिबल नहीं है। नॉर्थ कोरिया के पास अपनी कुछ तो क्षमता थी, उनके पास एक अपना छोटा न्यूक्लियर रिएक्टर था जिससे उनके पास प्लूटोनियम था, और बाद में उन्होंने थोड़ी बहुत ड्राइंग और थोड़ा बहुत मदद जो है, जैसा बताया जाता है, वो पाकिस्तान से लेके अपना अणु बम तैयार किया।
आखिरकार उत्तर कोरिया ने परमाणु बम बना लिए, परीक्षण किए। ये वही परमाणु बम हैं जिनके बल पर उत्तर कोरिया दुनिया को आंखें दिखाता है। तो कितने परमाणु बम हैं उसके पास? अंतर्राष्ट्रीय मामलों की भारतीय परिषद के रिसर्च फेलो राहुल मिश्रा।
इंटरनेशनल कम्युनिटी ये नहीं जानती है कि उत्तरी कोरिया के पास वाकई में कितने न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं और कितनी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी। एक रफ एस्टिमेट जो सिपरी ने निकाला है, उनका कहना है कि अगर प्रिमिटिव न्यूक्लियर बॉम्ब्स उत्तरी कोरिया बनाता है, 5 किलो का एक बॉम्ब के हिसाब से उनके पास ज्यादा से ज्यादा 8 बॉम्ब्स वो बना सकते हैं। उनके पास बहुत कुछ नहीं है जो कि एक कन्वेंशनल न्यूक्लियर पावर के पास होना चाहिए।
जहां एक ओर उत्तर कोरिया परमाणु शक्ति से लैस हो चुका है, साथ ही वो लगातार मिसाइलों का भी परीक्षण कर रहा है, दुनिया भी उत्तर कोरिया पर लगे प्रतिबंध और कड़े करती जा रही है ताकि वो अपने परमाणु कार्यक्रम का विस्तार न कर सके। लेकिन क्या आज की स्थिति में उत्तर कोरिया किसी देश पर बम गिरा सकने की स्थिति में है? पल्लव बागला।
देखिए, जो अणु बम उनके पास है, जैसा बताया जाता है, वो अभी काफी भारी है और उसको आप या तो एयरक्राफ्ट से डिलीवर कर सकते हैं या मिसाइल से डिलीवर कर सकते हैं। तो अभी वो लगे हैं कि अणु बम को हल्का किया जाए और ऐसे सक्षम मिसाइल बनाए जाएं जिससे कि वो दुश्मन देश पे छोड़ा जा सके, और दूसरी तरफ से बाकी दुनिया के देश लगे हैं कि किसी ना किसी तरह से उत्तर कोरिया अपना अणु बम और मिसाइल प्रोग्राम को रोल बैक कर सके। उनके ऊपर बहुत सैंक्शंस और टेक्नोलॉजी डिनायल लगी हुई है, लेकिन उनके ऐसा नहीं कि दोस्त नहीं है। चाइना और पाकिस्तान उत्तर कोरिया के काफी दोस्त हैं और उनसे उनको मदद मिलती रहती है।
शायद यही वजह है कि तमाम पाबंदियों के बावजूद उत्तर कोरिया अपने परमाणु कार्यक्रम पर लगातार आगे बढ़ता रहा है और अमेरिका व दुनिया की दूसरी ताकतों को ठेंगा दिखाता रहा है। मोहनलाल शर्मा, BBC।
ये थी दुनिया जहान, जो आप सुन रहे थे मोहनलाल शर्मा से। और अब समय है खेल के समाचारों का, राखी शर्मा के साथ।
वेस्टइंडीज का दौरा कर रही भारतीय क्रिकेट टीम को अपना नया कोच अगले महीने होने जा रहे श्रीलंका दौरे से पहले मिल जाएगा। इस बात का आश्वासन आज BCCI अधिकारी राजीव शुक्ला ने दिया। कल भारतीय टीम के कोच अनिल कुंबले ने अपने पद से इस्तीफा दिया था। उन्हें भारतीय टीम के साथ वेस्टइंडीज दौरे पर बतौर कोच भेजा जा रहा था। वहीं भारतीय खिलाड़ी PV सिंधु और साइना नेहवाल ने ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन सुपर सीरीज के दूसरे दौर में प्रवेश कर लिया है। इसके अलावा हाल ही में इंडोनेशिया का खिताब जीतने वाले के श्रीकांत ने भी विजयी आगाज करते हुए मेन सिंगल्स के दूसरे दौर में जगह बनाई। विश्व के 22वें वरीयता प्राप्त खिलाड़ी श्रीकांत ने पहले दौर में चीनी ताइपे के कांचौ यू को 21-13, 21-16 से मात दी। अगले दौर में श्रीकांत का सामना टॉप सीड सोनवा हो से होगा। दक्षिण कोरिया के खिलाड़ी सोनवा हो को श्रीकांत ने इंडोनेशिया ओपन के सेमीफाइनल में हराया था। इस टूर्नामेंट में श्रीकांत के साथ बी साई प्रणीत भी अगले दौर में पहुंच गए हैं। उन्होंने टॉमी सुगियाट्रे को 10-21, 21-12, 21-10 से हराया।
बहुत बहुत शुक्रिया राखी शर्मा इन तमाम खेल की खबरों के लिए। और अब एक बार फिर से समय हो चुका है मुख्य समाचारों को सुनने का, हरिता कांडपाल से।
BBC समाचार। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड पार्टी ने राष्ट्रपति पद के लिए NDA के उम्मीदवार रामनाथ कोविंद को समर्थन देने का ऐलान किया है। कल जनता दल यूनाइटेड दिल्ली में विपक्ष की बैठक में शामिल नहीं होगी। सऊदी अरब के शाह सलमान ने बड़ा परिवर्तन करते हुए अपने बेटे मोहम्मद बिन सलमान को सऊदी अरब का क्राउन प्रिंस बनाया है। अब वो सऊदी अरब के उप प्रधानमंत्री बन जाएंगे। फिलहाल वो सऊदी अरब के विदेश मंत्री हैं। बेल्जियम के सरकारी वकील के मुताबिक राजधानी ब्रसेल्स के सेंट्रल स्टेशन में कल मारा गया संदिग्ध हमलावर मोरक्को का नागरिक था। ब्रिटेन की कंजर्वेटिव सरकार ने नए संसदीय सत्र के लिए अपने एजेंडे का खाका पेश किया है। चुनाव में बहुमत हारने के बाद सरकार के एजेंडे में पार्टी मैनिफेस्टो के विवादित मुद्दों से दूरी बनाई गई है। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ ने ब्रिटेन की संसद के सत्र की औपचारिक शुरुआत अपने उद्बोधन से की। BBC समाचार।
तो BBC की अगली सभा नमस्कार भारत में आपसे फिर मुलाकात होगी सुबह 6:30 बजे। इस कार्यक्रम में तकनीकी पक्ष संभाला राजेश चौहान ने। लगातार 2400 घंटे खबरों के लिए आप आ सकते हैं हमारी वेबसाइट bbchindi.com पर, जहां पर न सिर्फ आपको खबरें बल्कि ऑडियो और वीडियो भी मिलेगा। नितिन श्रीवास्तव को अनुमति दीजिए। नमस्कार।